जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारे यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवन चारे जमुना तीरवन हाँ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हे दीन बंधु हे दुख हारी हे दीन बंधु हे दीन बंधु हे दुख हारी भक्त वात्सल भव भय हारी भक्त वात्सल भक्त वत्सल भव भय हारी भक्त वत्सल जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ धारे
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका बेस थोड़ा कम करो, थोड़ा पतला करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 9 शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार, माने मोहन आजी बनेंगे मोहिनी, मोहन बनेंगे मोहिनी। श्लोक 1 से 3 तक पाठ करेंगे, 3 में तात्पर्य है, ये 2 छोटे छोटे श्लोक है, आइए पाठ करते हैं। श्री शुक उवाच, ते अन्योन्यतो शूराः, ते अन्यो अन्यतो सुराः पात्रम् हरन्त त्यक्त सौहृदाः क्षिपन्तो दस्यु धर्माणः आयन्तिं ददृशु स्त्रियम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए, उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। श्लोक क्रमांक 2, अहो रूपम अहो धामा, अहो अस्या नवम वयाः, इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रचुर जात सौहृदाः, सॉरी पप्रचुर जात हृच्छयाः, अहो रूपम अहो धामा, अहो अस्य नवम वयाः, इति ते ताम अभिद्रत्य पप्रचुर जात हृच्छयाः। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओहो बोलो इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है, और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भू करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उसे तरह तरह से प्रश्न पूछने लगे। कितने बढ़िया असुर है ये। अब तीसरा देखो, का त्वं कंजपला साक्षी कुतुबा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वा मूरु मथनतीव मनांसिनः का त्वं कंजपला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वा मूरु मथनतीव मनांसिनः। पढ़िए, रामानुज जी पढ़िए। हाँ पढ़िए। और कोई माता जी? दो दो पढ़िए पढ़िए। हाँ, चार मिलके पढ़िए। और कोई? आप पढ़िए। ठीक है, शब्दानुवाद। का कौन, त्वम तुम हो, कंज पलाश अक्षी कमल की पंखुड़ियों जैसे आंखों वाली, कुतः कहां से वा अथवा किम चिकीर्षसि किस प्रयोजन से यहां आई हो, कस्य किसकी, असि हो, वद हमसे कहो, वामोरु हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, मथनती उद्वेलित करती हुई ईव इस प्रकार मनांसे मन को नह हमारे। हे अद्भुत सुंदरी वाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती है। तुम आखिर हो कौन? तुम कहां से आई हो? यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। तात्पर्य, असुरों ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तुम किसकी हो? प्रश्न का अर्थ है, तुम किसकी पुत्री हो? क्योंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि यह सुंदरी अभी तक अविवाहित है, अतः वो उनसे हरेक उससे विवाह करना चाहता था। कितने असुर होंगे वहां पर? बहुत बड़े बड़े जितने सब असुर आ गए थे अमृत पीने के लिए। इस तरह उन्होंने पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्कीर्तनं यद्वन्दनं यदीक्षणं यत्स्मरणं यच्छ्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राण धन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री वृंदावन धाम में यमुना के इस पवित्र पुलिन पर नित्य प्रति हम लोग ये सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। कथा के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं अष्टम स्कंध के अंतर्गत समुद्र मंथन लीला। इस लीला में आप लोग सुनेंगे कि भगवान के कितने अवतार हुए, लगभग 4-5 अवतार तो हो ही गए, और किस तरह से सागर का मंथन होता है और उसमें से कई सारे चीजें निकलती है, और ये सब कथा आप लोगों ने पहले सुना होगा। आज हम लोग सुनेंगे वो सागर से जो अंतिम वस्तु जिसके लिए देवता और असुर दोनों प्रयास कर रहे थे वो बाहर चुकी है, वो आ चुकी है। उसका बंटवारा होना था दोनों पक्ष असुर एवं सुर। असुर स्वभाव से बलशाली है और उन्होंने अमृत कलश को छीन लिया, देवता लोग वहीं खड़े खड़े रह गए। छीन तो लिया पर कोई पिया नहीं अभी तक। क्यों नहीं पिया? वो वस्तु प्राप्त करने मात्र से तत्ते अन्योन्यत सूरा पात्रम हरन्ति त्यक्त सहृदा। आसुरी गुण का ये पहला लक्षण यह बताते हैं, एक छोटी सी वस्तु कुछ मिल गई इतनी स्वार्थी होते हैं वो अपने अपने रिश्तेदारी अपने अपने संबंध को तिलांजलि दे दिए है आपस में, कोई मामा कोई चाचा कोई काका भाई दद्दा सब वहां एकत्रित हुए थे, लेकिन त्यक्त सहुरदा आपस में जो संबंध था उसको तुरंत काट दिए। अहम पूर्वम न त्वम, पहले मैं पीऊंगा फिर बाद में तुम पियोगे। सबसे पहले आसुरी सभ्यता का यही लक्षण है, आत्मतुष्टि है ना, हमको चाहिए, तुम यार खाओ ना खाओ रसगुल्ले हमको ही चाहिए, पहले हमसे ही शुरू करो है ना, आरती हमको ही दिखाओ, बाद में दिखाना किसको। ये सारा का सारा आसुरी गुण है। ये सब चीजें हम क्यों सुनते हैं, आप सुनोगे जब श्रीमद् भागवत के ध्रुव चरित्र का प्रारंभ होता है, वहां पर सबसे पहले अधर्म की वंशावली कही जाती है, और अधर्म वंशावली सुनते सुनते वहां पर विदुर जी ने कहा कि जो इस प्रसंग को 3 बार सुनेगा वो पापों से रहित हो जाएगा। है किसको ये कथानक याद है किसको, हाथ ऊंचा करो, चलो हमसे सुन लो। ये ध्रुव चरित्र से पहले 8वें अध्याय में चतुर्थ स्कंद का जो 8वां अध्याय है उसके पहले आप देखेंगे ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ अधर्म, अधर्म की पत्नी का नाम झूठ माने मृषा, तो उनका वो विवाह, उससे एक पुत्र पैदा होता है, ऐसे ही पूरा पूरा वंश का विस्तार है, मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, कली है, झगड़ा है, क्रोध है, हिंसा है, यहां से लेकर के मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न उठेगा इनकी कथा सुनने से, अधर्म का वंश सुनने से उद्धार कैसे होगा, है ना स्वाभाविक, इसका उद्धार कैसे होगा। वो कहते हैं एक बार नहीं सुनना 3 बार सुनना, इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होगा, क्या आप लोग समझते हैं, 3 बार सुनने से मन में बैठ जाएगा कि यही कर्म करेंगे तो हमको मरना पड़ेगा, इसलिए हम ये कर्म नहीं करेंगे, तब पुण्य होगा, इसका यही अर्थ है। सो ये सागर मंथन जो प्रसंग है इसको जब हम पाठ करते हैं श्रवण करते हैं तो सबसे पहले देखिए अभी ये सब मिलकर के परिश्रम कर रहे थे, जैसे अमृत का कलश निकला ये त्यक्त सहृदा एकदम भूल गए। सहृद शब्द का अर्थ होता है अपने में जो मित्रता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, हित करने का जो भाव है वो एक मंटी में छोड़ दिए। इसका एक प्रखर उदाहरण भागवत के 10वें स्कंद के शुरुआत में मिलता है। कंस अपनी बहन देवकी को लेके जा रहा था रथ पे बिठाकर, मंगलसूत्र अभी भी डला हुआ है हाथ से, मेहंदी हाथ पे मेहंदी अभी भी लगी हुई है, नवविवाहिता पत्नी वो अपनी बहन कंस की बहन उनको वसुदेव के साथ वो छोड़ने जा रहा था, यही तो था हाँ? आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुद्ध, बस सुनते ही बिल्कुल कहां पुरुषोत्तम जी तलवार उठा ली हाँ? अरे हाथ से नहीं उठाता, पैर से थोड़ी उठाता है, म्यान से तो निकाल लिया, कहां पर उठाया, डी गेट के पास, डी गेट मथुरा कहां पर उठाया तलवार, है कि नहीं, कंस टीला वही है, विवाह वगैरह तो मथुरा में ही हो रहा था ना, तो जो राजमार्ग है जो हम लोग जाते हैं मथुरा वही तो कहीं उठाया होगा, तो हमने इसलिए कह दिया डी गेट के पास उठा लिया। तो देखो भारी सभा में विवाह का अभी रस्म चल रहा है, वो सहनाई बज रही है, मंगल सूत्र अभी उनके वो है गले में, एकदम मांगलिक चिन्ह से युक्त वो बालिका, उसको कंस लेकर के जा रहा है, क्या एक आकाशवाणी हो गई है, और वो भी हुई कि 8वां गर्भ अभी का नहीं, 8वां गर्भ, एक माता को 8वां गर्भ लेने के लिए कितना साल चाहिए कम से कम है? 10 साल कम से कम, मिनिमम 10 साल चाहिए। तो भाई तुम 10 वर्ष कम से कम इंतजार कर लेता, 2 साल कर लेता, 5 साल कर लेता, या तो जब विवाह करके वहां चली जाती घर में बुला लेता खिलाने पिलाने के लिए, फिर लेकर के जमुना जी में डाल देता, कुछ ना कुछ तो कर सकता था ना,
पर इतना क्रोध है वहीं पर बिल्कुल अपनी बहन उसके केस पकड़ करके और तलवार निकाल कर वहीं मारना चाहे। सोचिए इतना यही ठीक घटना हुई कश्मीर में, यही घटना हुई थी कश्मीर में। जब भाई है जिसको आप अंकल कहते हो, जिसके आप मदद करते हो, वही तुम्हारा गला काट दिया। नहीं काटा ही तो काट दिया मांसाहार करने वाले, लेकिन चुपचाप हमारा तो गला कटा नहीं ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस उसका गला कट गया। ये भागवती कथा है, समाज साहित्य विज्ञान सारा इसमें समाविष्ट है। त्यक्त सहृदा, इनके पास सहृद बिल्कुल नहीं होता। मांसाहार करने वाले आसुरी, पुराण में लिखा हुआ है मांसाहार करने वाले असुरी होते हैं, कोई सहृद नहीं, कोई कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। तुरंत क्षिपंतो दस्यु धर्माणो, दस्यु धर्म तुरंत दस्यु बन गए, एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। आयांतिम ददृशु स्त्रियम, पर उसी समय क्या हुआ, जब ये मारा मारी छेना झपटी कर रहे थे, थोड़ी दूर नजर पड़ी एमटी के पास एक सुंदर स्त्री आ रही थी। ददृशु स्त्रियम, किसने देखा, ये मारा मारी जो कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे, उन्होंने ही देखा, स्त्री को देखा। कैसा स्त्री, ओहो, सबसे पहले देखे क्या बोले, ओहो अहो रूपम महो धामा अहो अस्यम नवम बायह, कितना सुंदर है, अहो रूपम अहो धाम, इसका शरीर कैसा अद्भुत है, अहो अस्या नवम बयाह, इसका यौवन, इसका आकर्षक यौवन कितना आकर्षक है। इति ते ताम अभिद्रुत्य, ये अमृत कलश कहां गया किसी को पता नहीं है, उसको वही रख दिए, कौन लिया कोई पता नहीं। ताम अभिद्रुत्य प्रच्छु जात रच्छया, और शरीर में उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो गई। काम का दूसरा नाम है हृच्छया, क्या कहते हैं काम को, क्या कहते हैं, हृच्छया, हृदि शयते इति हृच्छया, माने काम का निवास कहां है, हृदय में है, मन में है, वो कहीं और हाथ पैर में नहीं है, हृदय में जो शयन करे उसको कहते हैं हृच्छया। तो मोहिनी को देखते ही इनके मन में आकर्षण इतना प्रबल हो गया, तो अमृत कलश को छोड़ करके दौड़े, जिसके लिए इतनी मेहनत, वासुकी नाग के मुंह पर रह करके जहर का धुआं पीते पीते खाते खाते इतना परिश्रम करके जिस अमृत कलश को प्राप्त किया था, अभी एक मिनट पहले जिसके लिए लड़ रहे थे, भाई पर भाई हावी पड़ रहा था, पर उसी अमृत कलश को फेंक करके मोहिनी के प्रति आकर्षित होकर के दौड़े। क्यों दौड़े, कामाति से युक्ता हृच्छया, मोहिनी को कौन प्राप्त करेगा, अरे ये अमृत सर से तो ये अमृत बढ़िया है, ये बाहड़ में जाए, चूल्हे में जाए, ये अमृत चूल्हे में जाए, वो अमृत चाहिए। तो तुरंत उसके पास चले गए, जाकर के एक असुर पूछता है, का तुम, आप कौन हो देवी, आप कौन हो। सबसे पहले कंज पलाशाक्षी, उन्होंने कहां देखा, सबसे पहले उनके मुखों को देखा। इसलिए किसी संत ने कहा, वैसे माताओं को नीचे से देखना चाहिए, पुरुषों को चाहे कि वो नीचे देखे, बस केवल चरणों को देख ले। अब मुंह उनका आकर्षक होता है, तो आप देखोगे तो असुरों ने सबसे पहले चेहरे को देखा। कात्वम कंज पलाशाक्षी, कंज पलाश माने पलाश कहते हैं कुसुम को, फूल को, कंज कहते हैं कमल को, कमल को कहते हैं कंज, क शब्द का अर्थ होता है जल, और जल से जो उत्पन्न है उसको कहते हैं कंज, कंज पलाश। कमल के पुष्प के पंखुड़ियों जैसे तुम्हारी आंखें हैं, हे कंज पलाशाखी, हे सुंदर नेत्र वाली, तुम कौन हो, कुतुब कहां से आई हो, किम चिकित्सी किस उद्देश्य से आई हो, कस्यासी किसकी हो, किसकी हो तुम पहले बताओ। और बामोरू हे सुंदर जांघो वाली, अर्थात हर एक मोहिनी तो उनको इतना अतिशय आकृष्ट लग रही थी, इतना सुंदर लग रही थी, वो सारे के सारे उनका ध्यान एकाग्र हो गया मोहिनी रूप पर और सब एकत्रित होकर के उनसे पूछने लगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, किस लिए तुम आए हो। मोहिनी का रूप यहां वर्णन है इस भागवत में, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अच्छा,
तस्यां नरेन्द्र करभूरु उषद्दुकुलः श्रोणी तटाल सगतीरि मद बेवहलाक्षी साकूजति कनक नूपुर सिंचितेन कुंभस्तनी कलश पाड़ी रथा विवेश ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारुकर्ण नासा कपूल बदनाम पर देवताख्याम संविक्ष सुमुहुर उत्सित विक्षणेन देवासुरा विगलित स्तन पट्टिकांताम।
मोहिनी को पता था किस तरह से इनको मोहित करना है। हमने शुरू में कहा है मोहन अब मोहिनी बनकर के आया है। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते नरेंद्र हे परीक्षित सावधान से सुनो, और टुंडू दास हो गए उनको जगा दो। सुनो बढ़िया से देखो क्या मोहिनी का रूप है।
तस्या नरेंद्र कर भोर सद्दुकुल।
हे नरेंद्र, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कर भोर उसद्दुकुल और उनकी जो सुंदर जांघें है वो रंभा वृक्ष के समान, कदली वृक्ष के समान। कदली वृक्ष देखा है, कदली केले के पेड़, केले का पेड़ इतना चिकना होता है, वो नीचे से मोटा होकर के ऊपर तक थोड़ा पतला हो जाता है। और जब भी किसी के जांघों की तुलना की जाती है तो केले के वृक्ष के साथ जांघों की तुलना की जाती है। तो करभोरु उसद्दुकुल और सुंदर सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती है, वहां हमारी मोहिनी सलवार सूट नहीं पहनी थी। बिल्कुल उसद्दुकुल फर्स्ट क्लास साड़ी पहन के आई थी, इसलिए सनातन धर्मावलंबी जितनी महिलाएं हैं वो सब साड़ी पहनती है। और वैसे साड़ी में जितनी सुंदरता आती है बाकी पेंट पहनने से उतना अच्छा रहता है, अच्छा नहीं लगता। माताओं की सुंदरता साड़ी में ही है। तो मोहिनी ने पहना है उसद्दुकुल श्रोणी तटाल असगति मदबी वलाक्षी, और उनका नितंब जो कटी प्रदेश बहुत स्फीत था, ऊंचा था, भारीपन के कारण वो मोहिनी धीरे धीरे चल रही थी। शरीर भारी है, कमर भारी है, इसलिए मोहिनी धीरे गति से मंथर गति से चल रही थी। देखो सुंदर जांघ है और कमर पर बिल्कुल पतली महीन साड़ी है, सिल्क साड़ी। ध्यान करो कथा का अर्थ होता है भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। अब इससे क्या होता है जब भगवान का प्रभाव हम देखेंगे, देखो मोहिनी बनकर के आकर के कितनी प्रभावी है। केवल आने मात्र से, उनके प्रवेश मात्र से ही सारे असुर चित्त है, ये उनका प्रभाव है। स्वभाव कैसे, क्या वस्त्र पहन के, कैसे रूप लेकर के आए हैं, यहां सुख वर्णन करते हैं। श्रोणी तटाल सगतिर मद बेहलाक्षी, और उनका कमर प्रदेश जो है, तटी प्रदेश, ये कटी नितंब स्फीत है। माताओं का ये प्रदेश स्फीत होता है, माने ऊंचा होता है, चौड़ा होता है। मद बेहलाक्षी, और उनके जो नेत्र है मानो उस नेत्र में बहुत नींद है, कोई माता जी इतनी आंखें फाड़ करके देखे अच्छा थोड़ी लगेगा। एकदम धीरे, एकदम ऐसे ही बंद हुई नेत्र, थोड़े थोड़ा थोड़ा दिखता है कंज पलासाक्षी और मद विह्वलाक्षी। वहां पर कंज पलासाक्षी, यहां पर मद विह्वलाक्षी, यानी कि नेत्र में नशा है, मतवाली आंखें हैं, इस प्रकार आंखों वाली। साकूजती कनक नूपुर सिंचितेन, और चरणों में नूपुर है, जैसे धीर मंथर गति से जब मोहिनी आ रही थी तो छम 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 आवाज हो रही थी, ध्वनि हो रही थी, मानो कोई कोयल, मानो एक सुंदर कोई वाद्य यंत्र की झनकार है। कुंभ स्तनी कलश पाणी रथावी बेस, और उनका स्तन जुगल बिल्व फल के समान, कलश के समान सुंदर है, और वो कलश लेकर यानी कि अमृत कलश लेकर के वो प्रकट हुई। कुंभ स्तनी कलश पाणी रथावी बेस, और उस सभा में प्रविष्ट हो गई, है ना, ये बिल्कुल ये रूप आंखों के सामने दिख रहा है।
ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारु कर्ण,
मानो दिख रही है कि दूसरी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी की सखी है। वैसे भी तो सही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये लक्ष्मी की सखी नहीं है, ये कौन है, लक्ष्मी का सखा, ये लक्ष्मी का सखा है, पर सखा बन के आई सखी, तो श्री सखी, ये लक्ष्मी जी की सखी है। लेकिन यहां कहने के पीछे और एक कारण है, क्यों, लक्ष्मी जी के मन में अहंकार हो गया था, इस संसार में जितने पुरुष है सबसे सुंदर है हमारे प्राण प्रियतम, विष्णु से अधिक सुंदर कोई नहीं है, और संसार में जितनी स्त्रियां है सबसे सुंदर मैं हूं, बेलवन में रहने वाली, है ना, सबसे सुंदर मैं हूं और सबसे सुंदर हमारे पति देव है ना। लेकिन पति देव ने कहा, भाई ये अहंकार बहुत अधिक चलने वाला है नहीं, तो तत्क्षण भगवान मोहिनी बन के आ गए, सखी बन गए। तो लक्ष्मी जी मानो से देखती है, अरे मैं तो सोचती थी कि मैं सुंदर हूं, पर ये तो हमसे 100 गुना सुंदर निकले। तो लक्ष्मी जी के अभिमान को तोड़ने के लिए मोहन आज मोहिनी बन के आए हैं।
श्री सखिम कनक कुंडल चारु कर्णम,
और उनके कानों में कनक कुंडल, कुंडल माने सोने का कुंडल झिलमिला रहा था।
नासा कपोल बदनम पर देवताख्यम,
और उनकी नासिका अतिशय सुंदर, कपोल गाल वो भी चिकने चिकने सुंदर है, और बदन मुखारविंद वो भी सुंदर है। परदेवताख्यम, लगता है कि इस संसार में जो ब्रह्मा जी है वो अपने सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को उन्होंने प्रदर्शित कर दिया है।
संबीख्य सम्मोहोरुत्सित स्मित विक्षणेन,
और उन्होंने असुरों की तरफ देखा, कैसे देखा,
सम्मोह,
और उनको मोहित करने के लिए स्मित विक्षणेन। यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, माताएं घूंघट करती है ऐसे ऐसे, मान लीजिए डाल देती है, पूरा पूरा डाल देती है, ठीक है ना, अरे यार ये खो, ऐसा पूरा डालती है ना, ऐसे ऐसे करके डाल, ठीक है, हैं, और ऐसे डाल, और लेकिन वो मोहिनी जो है इतना नहीं डाला था, आधा डाला था, इतना इतना करके ऐसे देखती थी, लिखा हुआ है ऐसे, आधा ऐसे देखती थी। उसने लिखा, सम्मोह उत्सित वीक्षणे न देवासुरा विगलित, वो मोहिनी जब आधी घूंघट लगाकर देखती थी असुर पानी पानी हो गए, इतना नहीं है, विगलित स्तनपट्टी कांताम, तो वो जो कंचु की यहाँ जो ऊपर जो वस्त्र माताएं पहनती है तो यहाँ कवर करती है, लेकिन मोहिनी ने क्या किया था, इधर आधान खोल दिया था। भागवत में सारी बात, हम एक बात मन से नहीं कह रहे, ठीक मोहिनी को आज की महिलाएं डबिंग करती है, ये स्टाइल जो है ये मोहिनी से ही है। हम सोचते थे ये स्टाइल, ये जो बाल काटते हैं ना, आधी बाल यहां लटका देते हैं, ये पुतना स्टाइल है, ये स्टाइल सबसे पहले पुतना ने किया था, पूरा बाल काट दिया, 2-4 बाल यहां छोड़ दिया, ये पुतना स्टाइल। पर यहां छाती से जो वस्त्र हटाना, ये देखिए ये लिखा हुआ है, आप मोबाइल में सबके पास भागवत होगा, देखो, विगलित स्तनपट्टी कांतम, अपने वक्षज को अपने स्तन को ढक के रखा जाता है, माताएं ऐसे ऐसे साड़ी पहनती है, लेकिन आकर्षक बनाने के लिए अपने आप को उन्होंने साड़ी खोल दिया, आधा आधा रख दिया। देखो भागवत में बिल्कुल शर्म के कारण नहीं लिखा, बिल्कुल बेशर्मी से लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान मोहिनी जो है वो मोहित करने के लिए आए थे, इस रंगमंच पर जब उतरे बिल्कुल पक्का अभिनय करेंगे, है ना। भगवान से अभिनेता और बढ़िया कौन हो सकता है ना। राम के अवतार में भगवान आए, वाल्मीकि ने कहीं उनको भगवान सिद्ध नहीं किया, नहीं किया। लोग आरोप लगाते हैं कि वाल्मीकि ने राम को पुरुषोत्तम एक नर रूप में सिद्ध किया, उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि राम आए थे दशरथ पुत्र के रूप में, नर रूप में आए थे। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं राम को भगवान के रूप में सिद्ध नहीं किया। पर हमारे कन्हैया क्या कहा, रणभूमि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से बढ़कर के कोई कुछ नहीं है, मैं हूं। पर राम ने ऐसा नहीं कहा, पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, राम कथा की लीला होगी यहीं पर पुरुषोत्तम मास में, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा 17 जुलाई से 26 जुलाई 9 दिन की कथा यहीं होगी। आप सबको मैं पहले से निमंत्रण देता हूं। तो राम की सरजू की धारा यहां बहेगी। सो हम ये कह रहे थे एक एक अवतार में वो कहता है कि भाई मैं भगवान हूं, क्योंकि वहां आए थे अपने सिद्ध करने के लिए, और रामावतार में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भी उन्होंने नहीं कहा हम भगवान है। जब जब भी कोई व्यक्ति कहता था कि ये विष्णु है तो उन्होंने वो जिह्वा पकड़ लेते थे। सो मित्रों, जिस भूमिका में मोहिनी आए हैं, जिसके लिए आए हैं, पूरा पूरा वही करना है। वो आधे स्तन से हटाए, ऐसा नहीं कि उनको मर्यादा पता नहीं, क्योंकि वो आए थे और असुर लोगों की दृष्टि मुख पर और वक्ष पर है, उसी को देखने के लिए, तो उसी को दिखा करके तो मोहित करेंगे। इसलिए उन्होंने घूंघट आधी खिसक ली और वक्ष से साड़ी भी हटवा लिया। इस तरह से उस असुर को देख करके उन लोगों ने पूछा, एक आचार्य बंसीधर उन्होंने उनके भाव को कैसे कैसे वर्णन किया है सुनो। आहा, उन्होंने अहो अस्य नवम इत्युक्त्वा नवम स्तुत्य सर्व रत्न रूपत्वात्। वो कहते जो मोहिनी नहीं है ये रत्न है। ये रत्न कैसा है, हास्यम शंख निभम नितंब तुरगौरंभादि जंघाद्वयम्। बोले हास्यम शंख निभम, वो मोहिनी जब हंसती थी वो शंख की तरह उनके मुखाकृति सुंदर लगती थी और उनके वहां पे यहाँ पे हाँ धारी आ जाती थी। हंस हास्यम शंख निभम नितंब तुरगौ, और उनका नितंब जो वो स्फित था, रंभादि जंघ द्वयम, और रंभा वृक्ष के कदल वृक्ष के समान उनके जांघे थे, वैद्यस्ते हृदयम, और उनका हृदय सब कुछ जानने वाला था, धनुष्च भ्रिकुटी, और उनके भ्रिकुटी की तुलना धनु के साथ करते हैं, धनुष्च भ्रिकुटी, मध्यम चति दर्शनम, और उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को नशा आ जाता था, मध्यम चति दर्शनम, वक्त्रम पूर्ण शशि, और उनका मुख कैसा था, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर, सुधा धरलता दंता मणि श्रेणया, और अमृत लता से कोई जैसे कोई फल होता है, कोई बीज होता है, उसी प्रकार उनकी दंत पंक्तियां थी, और कांति श्री, और लक्ष्मी के अंग के समान उनके कांति थी, अंग की कांति थी, गमनम गजह, हाथी की चाल के समान उनकी चाल थी, परिमलस्ती पारिजात द्रुमह, पारिजात के समान उनके शरीर की गंध थी, खुशबू थी, वाणी काम दुघा, और मानो उनकी वाणी कल्प वृक्ष से जैसे कोई वस्तु इच्छित वस्तु निकलती है, ऐसे उनकी वाणी कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने के लिए समर्थ थी, वाणी काम दुघा, कटाक्ष लहरी तत्काल कूटम, और उनकी जो कटाक्ष है, जो तिरछी चितवन, मानव भी हृदय में काम वासना को भर देती है, कालकूट विष के साथ इसकी तुलना करते हैं, तन्वांगी मुग्धैव किंतु मथितो गूढ़ी सुरी सागरः। हे तन्वांगी, हे सुंदर तनु वाली मोहिनी, तुमने हमारे हृदय रूपी सागर को तुमने मथ डाला है। हमने तो सागर का मंथन किया, लेकिन तुमने हमारे हृदय रूपी सागर को मथ डाला है। इस तरह से एक एक भाव व्यक्त करते हैं। मित्रों, माताओं, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं है, केवल भगवान मोहिनी का ये रूप है और उनका ये भाव प्रकट कर रहे हैं। तो मोहिनी आए थे असुरों को मोहित करने के लिए, और जहां कहीं भी असुर प्रबल होता है, भगवान हो या भगवान की शक्ति हो, इस तरह से वो मोहित करने के लिए आते ही आते हैं कहीं भी। यहां जैसे असुरों को मोहिनी ने आकर्षित कर लिया और मोहित कर लिया। एक समय की कथा है, एक असुर था महिषासुर। वो महिषासुर प्रबल हो गया था, आपने सुना होगा, बहुत आतंक था उसका, शायद पद्म पुराण में स्कंद पुराण में महिषासुर की कथा है। बहुत भयंकर था, दुर्गा दुर्गा पूजा में तो महिषासुर बद्ध होता है ना, महिषा बद्ध होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी था। उसके पास दो मंत्री थे, उनका नाम था शुंभ और निशुंभ, ये भी बड़े शक्तिशाली, ब्रह्मा वरदान था महिषा को और शुंभ निशुंभ को भी। वहां पर जब महिषा का आतंक प्रबल हुआ, देवताओं ने माँ दुर्गा के पास जाकर स्तुति करने लगे, विष्णु के पास गए, और विष्णु दुर्गा सारे देवगण ऐसे चिंता कर रहे थे, उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि से भगवती दुर्गा का प्राकट्य हुआ। सो वो दुर्गा जी जाती है रत्नगिरी पर, जहां महिषासुर की राजधानी थी, तो वो रत्नगिरी जाती है महिषासुर को मारने के लिए। तो अपने हाव भाव से सारे असुर आकृष्ट हो गए, जितने असुर गए सेनापतियों के साथ, उस सबको मार गिराए। महिषासुर के पास एक खबर आई, बिल्कुल ऐसे ये यहां जैसे असुर मर रहे हैं, वहां दुर्गा जी भी गई वही काम करने के लिए। महिषासुर के पास खबर आई तो महिषासुर ने सबसे पहले शुंभ निशुंभ को भेजा कि जाओ, कौन है वो स्त्री है जो इतना हमारे सारे राक्षस सेनाओं को बध कर डाला, उनको मारो। तो वहां जब शुंभ निशुंभ जाते हैं, तो शुंभ निशुंभ ने जब देखा उस दुर्गा जी के मोहिनी रूप को, ऐसे ही तो चुपचाप सोच रहे थे कि क्यों राजा दानव एक स्त्री के प्रति इतना क्यों पागल होकर के पूरे राज्य को छोड़ रहे हैं और शासन नहीं कर रहे, क्या है उस स्त्री में। पर जैसे दुर्गा देवी उनके सामने आ गई, तो शुंभ निशुंभ ने देखा बाकी बात तो सही है, कोई भी देखेगा मोहित होगा, अरे महिषा चूल्हे में जाए, हम इनको पटा लेंगे। देखो आए थे लड़कर के मारने के लिए, लेकिन महिषा को पीछे हटा करके ये भी वही पूछने लगे, हे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस उद्देश्य से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, वो सब बताती है, अणाकार निराकार, बोले तुम्हारे तुम कहां से आए, मरुस्थली वहां से आई हूं, तुम्हारा गोत्र क्या है, अणाकार, पिताजी का नाम क्या है, निराकार, सब बता दिया दुर्गा जी ने। अच्छा हे सुंदरी, वैसे आप क्या चाहते हो। अब जैसे मोहिनी यहां कपट कर रही है, मोहिनी के बहन भी कपट कर रही है। देखो कपट की बड़ी आवश्यकता है, छल बहुत जरूरी है। छल ऐसी विक्रमणि बलि अद्भुत वामन पदनी खनी जनित जन पावन। यहां दुर्गा जी मोहित करती है। यहां हम लोग जब उड़ीसा में उड़िया भाषा में नाटक करते थे, ये पद पंक्तियां याद है। उड़ीसा कितने लोग हो यहां, हाँ, हे शुंभ निशुंभ तुटिला मोदंभ विवेक गलाणी हजी तुम सह मोर प्रीति पुष्प डोर विधाता थीला के खंजी है बेनी दैत्य कुमार। ये दुर्गा जी कहते हे शुंभ निशुंभ, ये उड़िया हिंदी जैसे ही है, कोई इतने अंतर ज्यादा नहीं। हे शुंभ निशुंभ, मैं तो दंभ भर करके आई थी महिषा को ब्याह करने के लिए, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा मन तो तुम्हारे में जा रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे। हे शुंभ निशुंभ तुटिला मोदंभ विवेक गलाणी हजी तुम्ह सह मोर प्रीति पुष्प डोर विधाता थीला की खंजी है बेनी दैत्य कुमार मुही अटे की योग्य तुम्हर है। अरे हे दैत्य, हे दैत्य कुमार, क्या मैं आपकी योग्या हूं। दुर्गा कहती है मैं आपकी योग्या नहीं हूं। और शुंभ निशुंभ तो उनकी बात सुनकर के पागल हो गए। शुंभ निशुंभ ने कथा कहिल कि कुहुवर सिल पारुनुत आंभे बुझी
क्यों पथे मारा पेशी लता सर पारो नु से भेद है जी तुम्भ चरणे निकी देलु एवे नी पराण बिकी हे तुम्भ चरणे निकी। हे देवी जी आपने बात कही कि कोयल की कोहतान सुनाई, आपने कथा कही या कोयल की तरह आपने बोली बोली कुहुतान किया हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब से आपको देखा किस मार्ग से हमारे छाती के भीतर काम प्रवेश किया, क्यों पथे मार पेशीला से सर, अने काम बाण ने किधर से बाण छोड़ दिया हमको पता नहीं लग रहा है, पर पता लगे ना लगे पर हम तो विश्वास करके कहते हैं आप हमारी बात विश्वास करो, आज से ये दोनों मस्तक तुम्हारे चरणों में ही है, तुम्हारे चरण आपको समर्पण कर दिए। अब दुर्गा जी ने जब देखा कि ये दोनों बिल्कुल मोहित हो गए तो दुर्गा जी कहती है महिषार आसे आसे थेले से से पड़ी ली तुम भांदरे होई प्रवेश करी व प्रवेश पूरे आम आनंद रे हे बे तुम घरणी पिता करी बे बाट बरणी हे बे तुम घरणी। तो दुर्गा जी और उनको मोहित करके कहती है देखो महिषा में आशा बांध करके मैं आई थी, महिषा को विवाह करने के लिए तो हम आई थी लेकिन आपके फंदे में हमारा मन फंस गया और मैं चाहती हूं कि आप दूल्हे राजा के रूप में सज जाओ और बिल्कुल बारात लेकर के आ जाओ, हमारे पिताजी वहां बैठे हुए हैं तुम्हारी बाटवरणी करेंगे यानी कि तुम्हारी अभ्यगत करेंगे। कैसे अभ्यगत हो गए आप लोग देखोगे। तो कहते हैं तुम जल्दी जल्दी आओ, तो इतने में वो तैयार हो गए, इतने बस इतनी सी बात अभी जाते हैं दूल्हा बन के अभी आ जाते हैं अभी तुरंत विवाह करेंगे। तब दुर्गा जी कहती है सुनो बात तो तुम्हारी सही है लेकिन एक शर्त हमारी है। क्या शर्त है? बोले हमको नृत्य गीत बहुत पसंद है, थोड़ा आप नृत्य करोगे गीत गाओगे क्योंकि जब विवाह करेंगे आगे तो यही करेंगे, आप भी कलाकार हो मैं भी कलाकार हूं बढ़िया काम चलेगा तो थोड़ा गीत गा कर सुना दो ना। तो सुम्बन इसमें कहते यही बात है बस अभी अभी नाचते हैं तो ताता थेया करके नृत्य करते हैं एक गीत भी गाते हैं। हे मीन जैसी आंखों वाली, हे मतवाली चाल वाली और हे सुंदर कटी प्रदेश वाली, आपको देख करके और हमारा धीरज नहीं रहे। दनुज दर्प हराए तोर रूप पसरा, दनुज दर्प हराए तोर रूप पसरा, कजल रेखा तले चपला करे खेला। अरे सुंदरी तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर दिख रही है और तुम्हारे चमकीले केस और तुम्हारी भ्रूलता तुम्हारी होंठ हर एक चीज को वर्णन कर देते हैं कि भाई तुमको देखने मात्र से हमारा धीरज टूट रहा है। और हे सजनी सजनी रजनी को विफल न हो भला, आरी देवी आज की रात आने वाली है आपके बिना ये रात बेकार नहीं होनी चाहिए, कि फल है जीवन है तो यौवन भी ना, आपको अगर नहीं पाएंगे ये रात हमारे बेकार चली जाएगी। हे सजनी हे प्रिय हम आपसे निवेदन करते हैं ये राती को आप सफल बनाओ। दुर्गा जी बिल्कुल वो तो जानती है, इतना कह करके जब वो तैयार हो गए तो देवी दुर्गा ने नृत्य करना शुरू किया। हे तुम्भ नृत्य गीत देखी हे लेमो प्रीत, अरे सुम्भ निशुम्भ आपने जो गीत और नृत्य किया उसको देख करके हम खुश हो गए और ये मानो जान लो कि हेली अजीमु जान तुम्हें प्राण मित, आज से मैं आपके घर ने घरवाली बन गई और आज से तुम हमारे प्राणनाथ बन गए, बस इतनी सी बात है। लेकिन सुनो आपकी जो ताल है आपका जो राग है उसका आरोहण मूर्छना हम सुनना चाहते हैं और जब आप नृत्य करोगे ना एक दूसरे के मस्तक पर हाथ दे करके थोड़ा नाच के दिखाओ। इधर से जब दुर्गा जी नाच करने नृत्य करने लगी और ऐसे हाथ रखने लगी शुंभ निशुंभ उसके रूप में इतना मोहित हो गए थे उन्होंने एक दूसरे के मस्तक पर हाथ रख दिया, रखते ही भस्म होकर के वहीं गिर पड़े क्योंकि उनका ब्रह्मा जी का वरदान था, बलशाली तो थे ही पर जिस समय एक दूसरे के मस्तक पर हस्त रखेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी और दुर्गा जी ने चाल करके उनको मरवा दिया और बच गया महिषा। महिषा आया जब शुंभ निशुंभ मारे गए तो उनको पता चला शुंभ निशुंभ मारे गए तो महिषासुर आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए।
तो महिषासुर बहुत लड़ता है, बहुत प्रबल शक्तिशाली था। दुर्गा जी ने शूल भेद किया, पर कितनी बार भी किया उसका बक्षा भेद नहीं हो रहा है। आकाशवाणी हुई, सर्व मंगला ने आकाशवाणी कर दी, हे देवी महिषासुर को मारने के लिए तुमको विवश ना होना पड़ेगा। देखिए महिषासुर को मारना है तो आपको विवसना, विवसना माने निर्वस्त्र, आपको वस्त्र रहित तो होना पड़ेगा, यानी कि आपको नग्न होना पड़ेगा। एक स्त्री और नग्न होना और सबके सामने ये बहुत ही कठिन बात है, पर जब सर्व मंगला ने ये आकाशवाणी कर दी तो माता दुर्गा ने विचार किया भुवन के कल्याण के लिए यदि वस्त्र त्याग करना पड़े तो हम करेंगे। तो दुर्गा जी ने वस्त्र त्याग कर दिया। महिषा आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो महिषा देख रहा है जानो यौवन मुक्त नाही अंग वास, बोले तुम्हारे तुम्हारे जंगे तुम्हारे जानो उन्मुक्त है, तुम्हारा यौवन उन्मुक्त है, देह में तुम्हारा अंग वास नहीं है। मुक्त केश मुक्त वेश देखे लागे त्रास, बोले तुम्हारे केश मुक्त है तुम्हारा अंग मुक्त है, ऐसा विकृत रूप को देख करके हमारा मन अतिशय भयभीत हो रहा है, त्रसित हो रहा है। देखिए विरूप मोहे हुए ही न बल, बोले ये विकराल रूप देख करके मेरा बल घट रहा है। वक्ष मोर लक्ष्य करी आशय त्रिशूल, और मुझे दिख रहा है कि दुर्गा जी का वो त्रिशूल मेरा वक्ष को ही लक्ष्य करके। तो महिषा का जाने ले मो ब्रह्मवाणी होइला आज सत्य, आज मैंने जान लिया कि ब्रह्मा जी की वाणी आज सत्य हो रही है। विवसना नारी हस्ते होइले मो हतः, अच्छे निर्वस्ता नारी के हाथ में आज मेरी मृत्यु लिखी गई है। बस यही बात कह ही रहा था महिषा, दुर्गा जी का शूल महिषा का वक्ष भेद करता है, हमेशा हमेशा के लिए महिषा का आतंक खत्म हो जाता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से महिषासुर को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारी मृत्यु तो होगी पर एक निर्वस्त्र नारी के हाथ में होगी, शुंभ निशुंभ की मृत्यु तो होगी पर एक दूसरे के मस्तक पर हाथ रखेंगे तब मृत्यु होगी। पर ये सब कठिन वरदान को सिद्ध करने के लिए और उनके ब्रह्मा जी के वाक्य को अक्षुण रखने के लिए दुर्गा हो चाहे दुर्गा जी के भाई श्री हमारे श्री कृष्ण हो, तो दोनों ने ये सब लीला करी है। देखो मोहिनी अवतार में आकर के बिल्कुल झूठ बोलते हैं, वो करते हैं, और ये सारी बातें सारे भाव जो है इसका निष्कर्ष यही है मित्रों, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण जब वेद पाठ करके गुरु गृह से आते हैं तो लोक हित करते हैं, समाज के हित के लिए विद्या का प्रयोग करते हैं। हम लोग विद्या पढ़ करके आए हैं, जिसके पास जो भी है उसको चाहे कि समाज हित के लिए भगवान के लिए वो लगाए। और इसी अध्याय के आखिर में सुखदेव गोस्वामी कमेंट करते हैं, बोले प्रत्येक व्यक्ति के पास पांच चीज तो होती है, क्या क्या होती है, बोले असु बसु क्रिया मन और बुद्धि। कितनी चीजें हैं, असु बसु क्रिया मन और असु बसु क्रिया वाणी वाणी और मन, ठीक है, ये पांच है। तो बोले पांचों को लगा करके भगवान की सेवा करना यही इस अध्याय का अभिमुख है। हम लोग शरीर के सेवा में जो लगे हुए हैं ये शाखा की सेवा करना, वृक्ष की शाखा, इसी को कहते हैं पृथक भाव। यानी कि हमने सोच रखा है कि हमारा शरीर और हमारा परिवार इसी की सेवा करेंगे काम बनेगा, इसकी सेवा करने से हमारे मन में पृथकता पैदा होती है भगवान से। ये श्लोक जाकर पढ़ लेना, अंतिम श्लोक बोलते हैं पृथक भावत, ये पृथक भाव से ही हमारा दुख प्रारंभ हो गया। क्यों शुरू हो गया, बोले शाखा को आपने अगर वृक्ष से अलग मान लिया और उसी मान्यता के आधार पर आप सेवा करने लगे तो तुम्हारी सारी सेवा असत हो गई, व्यर्थ हो गई, क्योंकि शाखा में पानी देने से कोई लाभ होने वाला है नहीं। तो बेटर है कि उसकी जड़ों तक पहुंचिए, और जड़ में अगर आप जल दोगे वो शाखा भी हृष्ट पुष्ट हो जाएगी और वृक्ष भी फला फूला हो जाएगा। उसको कहते हैं अपृथक भाव और इसको कहते हैं पृथक भाव। पृथक भाव से ही दुर्गति और अपृथक भाव से ही सदगति है। शाखा की सेवा असत और मूल की सेवा सत है। तो ये पूरे सागर मंथन प्रक्रिया में आप देखेंगे देवता लोगों ने भी मेहनत करी, असुर लोगों ने भी मेहनत करी, लेकिन फल किसको मिला? देवताओं को मिला, क्योंकि देवता लोग शरणागत हुए भगवान के। इसलिए मित्रों, बंधुओं, माताओं, हम लोग के जीवन में भगवान के शरण में जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप करते हैं ये बहुत सरल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। खैर ये भी मुश्किल है, बहुत जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही कोई नाम जप करता है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है। आपको कहा जाएगा नाम जप करने के लिए, आप कर लोगे, लेकिन शरणागति डिफिकल्ट है। शरण में जाना आनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से विवर्जनम रक्ष स्थिति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। शरण में जाने से ही काम बनता है। तुलसी राम राम को होई नाम जपो, तुलसी तजी को समाज हो ही राम को नाम जप। इसलिए नाम जप के साथ शरणागति नहीं होने से ये काम लेट होगा, होगा लेकिन लंबा खींचेगा। तो ये सागर मंथन का प्रकरण आप लोग पढ़िएगा और इसमें खूब आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।